ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 11 शशि वृता। प्रिथा कुमारी का विवाह समर सिंह से हो जाने के कारण पृथ्वीराज को बहुत सहारा मिल गया था। समर सिंह के उदार नीति वाले विचारों के कारण उस समय चित्तौड़ तथा दिल्ली राज्यों में दिनों दिन घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी और इन दोनों राज्यों के शासक आपस में अभिन्न मित्र बन गए थे। रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज को खट्टू वन में एक बड़ा खजाना हाथ लगा था और इस खजाने को निकालने में समर सिंह ने पृथ्वीराज की बहुत सहायता की थी। एक बार जब पृथ्वीराज दिल्ली से अजमेर जा रहे थे तब रास्ते में ही वह खट्टू वन पड़ा जहां एक सुंदर तालाब था और उसी के किनारे एक मूर्ति बनी थी जिसके माथे पर लिखा था, सिर कटे धन संग रहे, सिर सजे धन जाए। जिसे देखकर पृथ्वीराज को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने चतुर मंत्री कैमास से इसका अर्थ पूछा। कैमास विलक्षण और बुद्धिमान पुरुष थे। उन्होंने उसी समय अर्थ समझाते हुए कहा कि इस स्थान पर एक बड़ा खजाना है, यदि आप उसे निकालना चाहें तो रावल समर सिंह जी को बुला लें। समर सिंह को बुलाने के दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि भोला राय भीमदेव उनसे अपनी दुश्मनी चुकाना चाहता था, इसीलिए उसको रोकने के लिए एक चतुर समर नीतिज्ञ पुरुष की जरूरत थी। दूसरे की शहाबुद्दीन भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कैमास के कहने के अनुसार उधर समर सिंह जी को बुलाने के लिए चंद पुंडीर के साथ कई सामंत अनेक प्रकार के उपहार लेकर चित्तौड़ गए और इधर धर्मायन ने अपने विश्वास पात्र दूत के द्वारा मोहम्मद गौरी को यह समाचार भेजा कि पृथ्वीराज इस समय खट्टू वन में धन निकालने में लगे हुए हैं, इसीलिए तुम अपने अपमान का बदला चुका सकते हो, यह उचित अवसर है। चंद पुंडीर की प्रार्थना के अनुसार रावल समर सिंह जी अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। रासों में लिखा है कि उसी समय गजनी से मोहम्मद गौरी भी अपने चुने हुए सरदारों के साथ आ पहुंचा। उनके आने से पहले ही कैमास की बुद्धिमानी के अनुसार प्रबंध हो चुका था। नागौर में समर सिंह जी भीमदेव को रोकने के लिए जा पहुंचे और पृथ्वीराज भी आगे बढ़कर शहाबुद्दीन को पहले हरा कर बाद में धन निकालने में हाथ लगाना चाहते थे। इस बार नागौर के पास ही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज का सामना हुआ। समर सिंह जी भी नागौर में ही थे, इसीलिए उन्होंने भी सहायता दी और मोहम्मद गौरी अपने अनेक सवारों को खोकर फिर से कैद कर लिया गया। यह समाचार जब गजनी पहुंचा तब वहां से मोहम्मद गौरी को वापस बुलाने के लिए दूत आया। इस दूत का नाम लोरक राय खत्री था। उसके बहुत प्रार्थना करने पर पृथ्वीराज ने श्रृंगारहार नामक एक बहुत ही बढ़िया हाथी और बहुत सारा धन तथा घोड़े लेकर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। इसके बाद धन निकालने का काम शुरू हुआ। इस बार पृथ्वीराज को एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। उसका आधा भाग उन्होंने समर सिंह को देना चाहा, परंतु उन्होंने खुद नहीं लेकर अपने पास से कुछ और भी मिलाकर सैनिकों में बंटवा दिया। अभी यह काम समाप्त तो हुआ ही था तथा समर सिंह चित्तौड़ और पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे ही थे कि कुछ ही दिनों बाद पृथ्वीराज को एक नट के मुंह से यह समाचार मालूम हुआ कि देवगिरी के राजा भनराय यादव की पुत्री शशि वृता अनुपम सुंदरी रमणी है। भानराय अपनी पुत्री का विवाह जयचंद के भतीजे वीरचंद कमधुज से करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा जयचंद के पास टीका भी भेज दिया था। वह टीका लेकर कन्नौज गया, परंतु इधर शशि वृता पृथ्वीराज की प्रशंसा सुनकर मन ही मन उन पर मुग्ध हो रही थी। यह सब समाचार पृथ्वीराज को भी पता चला था। जब विवाह का दिन पास आया तब कन्नौज से वीरचंद कमधुज अपनी सेना तथा सामंतों के साथ विवाह करने के लिए चल पड़ा। तब पृथ्वीराज भी अपनी प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए आगे बढ़े। बड़े बड़े सामंत सरदार तथा 10,000 सैनिक पृथ्वीराज के साथ थे, क्योंकि इस बार एक भयानक युद्ध की संभावना थी। शशि वृता के माता पिता को जब अपनी पुत्री के दिल के भाव पता चले तब हालांकि उन सब लोगों ने बहुत समझाया, परंतु शशि वृता किसी भी तरह वीरचंद से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। उसकी यह हालत देखकर देवगिरी के राजा ने अपने मंत्री हमीर से सलाह ली। उसने यही उत्तर दिया कि आप कमधुज से ही शशि वृता का विवाह करें, क्योंकि आप टीका भेजकर वचनबद्ध हो चुके हैं। परंतु अपने पुत्री की ममता के कारण उन्होंने यह बात नहीं मानी और अपने हाथ से एक पत्र लिखकर पृथ्वीराज के पास भेज दिया। उसमें लिखा था कि शशिवृता शिवालय में रहेगी, आप आकर उसे ले जाइए। इस बार जब पृथ्वीराज को यह समाचार पता चला और उन्होंने पत्र पढ़ा, तब वे अपनी सेना का भार नरनाग कर्ण को सौंपकर खुद निड्ढुर राय तथा यादव राय बग्गरी के साथ चुपचाप देवगिरी जाकर नगर में घूमने लगे। शशिवृता को भी पृथ्वीराज के आने का समाचार मिल चुका था, इसीलिए एक दिन जब घूमते हुए पृथ्वीराज किले के नीचे पहुंचे तो ऊपर से शशिवृता ने उन्हें देख लिया। दोनों की आंखें चार हुईं। सारांश यह कि शशिवृता पृथ्वीराज को आया हुआ जानकर अपने पिता की आज्ञा लेकर शिव पूजन करने को चल दी। उसके साथ ही कमधुज की सेना तथा शशिवृता के पिता की सेना भी थी। पृथ्वीराज ने इस समय चालाकी से काम लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को योगियों के वेश में वीरचंद कमधुज की सेना में मिल जाने की आज्ञा दी। अस्त्रों को गुप्त तरीके से छिपाते हुए पृथ्वीराज के सैनिक शशिवृता के पिता तथा वीरचंद की सम्मिलित सेना में जाकर शामिल हो गए। इधर पृथ्वीराज भी एक सुंदर घोड़े पर सवार होकर उस मंदिर के पास जा पहुंचे और जैसे ही शशिवृता पूजन करके बाहर निकली, वैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर तेजी से एक ओर चल पड़े। अब शशिवृता के कारण भी भयानक खून खराबे का समय आ गया था। शशिवृता को लेकर पृथ्वीराज को भागते देखकर वीरचंद की सेना हुंकार कर उठी। कहां तो मंदिर के सामने उसकी सखियां मंगल गीत गा गाकर मंगल ध्वनि कर रही थीं, और कहां युद्ध के बाजे बजने लगे। जयचंद का भतीजा कमधुज वीरचंद केसरिया बाना पहने शस्त्र बांधे शिव दर्शन को आ रहा था। शशिवृता का इस तरह हरण होते देख वह तलवार निकालकर पृथ्वीराज की ओर झपटा। जैसे ही उसने सुंदरी शशिवृता को पृथ्वीराज से छीन लेना चाहा, वैसे ही पृथ्वीराज के वीर सामंत तथा सैनिक अपनी कपट गुदड़ी फेंक कर शस्त्र चलाने लगे। मंदिर के पास ही मार काट मच गई। फिर किसी तरह शशिवृता को साथ लेकर पृथ्वीराज अपनी सेना के पड़ाव में जा पहुंचे। अब लगातार युद्ध होने लगा। बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस बार कर्ण की आंखों की पट्टी भी खोल दी गई। हालांकि उस समय राजभान ने शशिवृता के प्रेम के कारण पृथ्वीराज को पत्र लिखा था, परंतु अब आत्मरक्षा और सम्मान को बचाने के लिए वह भी कमधुज के साथ ही हो गया। शाम होने वाली थी, परंतु सैनिकों को आराम नहीं था और युद्ध हो ही रहा था। इसी युद्ध में शशिवृता का भाई मारा गया। राजा भान ने पृथ्वीराज से हार मानकर अपनी सेना लौटा ली, परंतु कमधुज ने हार नहीं मानी। दूसरे दिन भी युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में कमधुज वीर का साथी खूज खवास मारा गया। उसकी मृत्यु से कमधुज को बहुत दुख हुआ, साथ ही कुछ डर भी उत्पन्न हुआ। इसीलिए वह सामंतों के साथ इस बारे में विचार करने लगा कि अब क्या करना उचित है। उसके सामंतों ने इस बार युद्ध का घोर विरोध किया और कहा कि एक स्त्री के लिए हजारों मनुष्यों का बलिदान देना उचित नहीं है। इसीलिए जैसे भी हो इस लड़ाई को खत्म कर देना ही उचित है। कमधुज ने भी अपने मंत्रियों की यह सलाह मान ली और उसी समय अपनी सेना को लौटने की आज्ञा दी। इधर वीरचंद कमधुज ने यह सोच करके अपनी सेना लौटाई। उधर पृथ्वीराज के सैनिक तथा सामंतों ने समझा कि कमधुज की सेना हार कर पीछे हट रही है और उसकी सेना की ताकत कम हो गई है। यह सोचकर पृथ्वीराज की ओर से और तेजी से आक्रमण किया गया। वास्तव में कमधुज की सेना किसी प्रकार से भी कमजोर नहीं थी, इसीलिए पृथ्वीराज की सेना को आक्रमण करते देख अपने अपने स्थान पर जाकर डट गए और फिर से भयानक युद्ध होने लगा। निड्ढू राय ने अपने मालिक की ओर से घोर युद्ध किया। शाम के समय उसका पराक्रम और वीरता देखकर कमधुज की सेना में हलचल मच गई तथा उसके नौ मुखिया तथा सेनापति मारे गए। वीरचंद के पिता के मस्तक पर हमेशा चांदी का छत्र लगा रहता था। चंद पुंडीर ने एक ऐसा बाण मारा कि वह छत्र कटकर दूर जा गिरा। छत्र के कटते ही सारी सेना में भयानक कोलाहल मच गया और कमधुज खुद भी बहुत डर गया। इस समय शाम हो चुकी थी, इसलिए युद्ध बंद हो गया। कमधुज अपने मंत्रियों से इस युद्ध के बारे में सलाह करने बैठा तथा पृथ्वीराज अपने मंत्रियों के साथ। इस बार पृथ्वीराज के मंत्रियों ने कहा कि आप शशिवृता को लेकर दिल्ली चले जाइए, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। परंतु पृथ्वीराज ने यह बात नहीं मानी और कहा कि आप लोगों को मुसीबत में छोड़कर दिल्ली जाकर खुशी नहीं मनाना चाहते, ऐसा नीच काम मुझसे नहीं हो सकता। इसीलिए लाचार होकर सबको चुप रह जाना पड़ा। दूसरे दिन सुबह होते ही फिर से युद्ध के बाजे बजने लगे। आज पृथ्वीराज की ओर से निड्ढुर राय सेनापति नियुक्त हुए। दोनों ओर की सेनाएं अपनी अपनी जगह पर जाकर डट गईं। भयानक युद्ध हुआ, परंतु आज के युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। निड्ढुर राय की वीरता ने शत्रुओं के छक्के छोड़ा दिए। वीरचंद कमध्वज पकड़ लिया गया, परंतु पृथ्वीराज ने तुरंत ही उसे छोड़ देने की आज्ञा दी और कहा कि अपना काम हो गया, अब उसे पकड़ने से क्या ही लाभ है। इस तरह हजारों मनुष्यों का बलिदान देकर पृथ्वीराज ने सुंदरी शशिवृता को अपने गले का हार बनाया और उसे साथ लेकर दिल्ली जा पहुंचे। इधर पृथ्वीराज दिल्ली गए, उधर वीरचंद ने पृथ्वीराज से हार का बदला राजा भान से लेना चाहा। उसने देवगिरी के किले को चारों ओर से घेर लिया तथा कुछ और सेना भेजने का अनुरोध करते हुए सारे समाचार जयचंद को लिख भेजे। जब राजा भान ने खुद को घिरा हुआ पाया तब उसने भी पृथ्वीराज को लिखा कि आपके कारण ही मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ, इसीलिए आप इस समय रक्षा कीजिए। उसी समय वीरचंद का पत्र लेकर दूत कन्नौज गया। पत्र के अलावा उसने सारे समाचार जयचंद को सुनाए। जयचंद बहुत ही क्रोधित हुआ। एक तो दिल्ली का राज सिंहासन नहीं मिलने के कारण वह पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता ही था, दूसरे इस काम ने उस ईर्ष्या को और भी बढ़ा दिया। उसने तुरंत ही अपने मंत्रियों को बुलाकर इस बारे में सलाह ली और यह आज्ञा दी कि सारे अधीनस्थ राजा तथा सामंतों को अपनी अपनी सेना के साथ तुरंत आने के लिए पत्र लिख दिए जाएं। मैं पृथ्वीराज चौहान तथा देवगिरी के राजा का घमंड तोड़कर राजसूय यज्ञ करूंगा। दूसरे दिन सुबह से ही कन्नौज में सेना इकट्ठी होने लगी। कुछ दिन चढ़ने पर राजा जयचंद भी अपनी सेना में आकर शामिल हो गए। उनकी सेना ध्वजा एक बड़े पेड़ के समान आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे सब वीर योद्धा आगे बढ़े। इसी समय नरवर के राजा का छोटा भाई अमर सिंह तथा दीर्घकाय महाबलशाली पंगु राय भी अपनी अपनी सेना सहित उनसे आकर मिल गए। इस तरह एक बहुत बड़ी सेना देवगिरी के राजा भान राय तथा पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए चल पड़ी। जब राजा भान का भेजा हुआ दूत दिल्ली में पृथ्वीराज के पास पहुंचा, तब पृथ्वीराज ने भी राजा भान की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा और चित्तौड़ के राजा समर सिंह को एक पत्र लिखा कि इस समय आपको सहायता जरूर करनी चाहिए। रावल समर सिंह ने पृथ्वीराज की ये प्रार्थना खुशी खुशी स्वीकार कर ली। रावल समर सिंह जी को यह समाचार पहले ही मिल चुका था कि यवन सेना फिर भारत पर आक्रमण करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने पत्र में पृथ्वीराज को दिल्ली न छोड़ने की सलाह देते हुए लिखा कि आप कुछ सामंत मेरे साथ भेज दें, हम लोग देवगिरी का प्रबंध कर लेंगे, आप उधर अपने साम्राज्य की रक्षा में लगे रहिए। पृथ्वीराज ने समर सिंह की सलाह मान ली। उन्होंने अपने सामंत चामुंड राय तथा जैतसी को समर सिंह जी की सहायता के लिए भेज दिया। इधर रावल समर सिंह जी ने अपने भाई अमर सिंह को सेना के साथ देवगिरी की रक्षा के लिए भेज दिया। जयचंद का भतीजा वीरचंद अब तक देवगिरी को घेरे हुए पड़ा था, परंतु कुछ कर नहीं सका था। चामुंड राय ने वहां जाकर रात के समय उस सेना पर आक्रमण कर दिया। एक तो वर्षा की अंधेरी रात, उस पर पानी बरसने के कारण वीरचंद की सेना पहले से ही विचलित हो रही थी। अब वर्षा के साथ तीरों की वर्षा होते देखकर वह सेना और भी घबरा गई, परंतु इतना सब होने पर भी उस सेना ने लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ा। दोनों दलों में भयानक लड़ाई होने लगी। अभी यह युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि एकाएक रावल समर सिंह की सेना लिए उनका भाई अमर सिंह भी वीरचंद की सेना पर टूट पड़ा। इस समय बहुत भीषण युद्ध हुआ। जयचंद को भी दूत द्वारा इसका समाचार लगातार मिल रहा था। वीरचंद की सेना की दुर्दशा होने का समाचार सुनकर वह और भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ लड़ाई के मैदान में जा पहुंचा। उसकी इच्छा थी कि वहां पहुंचते ही एकाएक धावा बोलकर चढ़ी सवारी से ही देवगिरी का किला अपने अधिकार में कर लेगा, परंतु जब उसने वहां जाकर देखा कि वह किला बहुत लंबा चौड़ा तथा खाई से घिरा हुआ है। तब उसे लाचार होकर पड़ाव डालना पड़ा। जयचंद बहुत कूटनीतिज्ञ था। उसने राजनीतिक चालों द्वारा वहां के रक्षकों को घूस देकर अपने पक्ष में मिलाना चाहा, परंतु इस काम में वह सफल नहीं हो सका। तब वह दूसरे ढंग की चालें चलने लगा। उसने किले में सुरंग लगाने की आज्ञा दी, परंतु किले की खाई इतनी गहरी थी कि उसकी यह कोशिश भी असफल हो गई। जब उसके साम, दाम, दंड तीनों शास्त्र असफल हो गए, तब उसने भेद नामक चौथे राजनीतिक शास्त्र का प्रयोग किया और अपने चतुर चर कीर्ति नामक भाट को राजा भान के पास भेजकर संधि का प्रस्ताव इस शर्त पर दिया कि हम दोनों मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करके पृथ्वीराज से अपमान का बदला लेंगे। हालांकि कीर्तिपाल ने ये बातें राजा भान से एकांत में कही थीं, फिर भी राजा भान ने इस बारे में अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने यही उत्तर दिया कि सांप, सिंह, आग, स्नेहहीन संबंधी तथा शत्रु की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।